अब कर्ज और उसकी शरई हैसियत को देखेंगे तो तीन बातें इसमें होंगी। आप देखेंगे, पहली बात है कि कर्ज का मफहूम क्या है, किसी को उधार देना, और लफ्ज करजा क्या है ना, तो लिखिए और काफ रौ दौद इसका रूट है। करदा अरबी जुबान में काटने को कहते हैं, अरबी जुबान का ये लफ्ज है। करदा यकरीदू का मानी क्या होता है, काटना, अलकता, यानी आप अगर लिखे ना कत्ता करदा, दोनों को साउंड देखे तो एक ही जैसी है। एक मानी क्या हुआ, करदा का कटना, ठीक है। दूसरा इसका मानी होता है गुजर जाना, सेकंड मानी लिखे, नंबर टू गुजर जाना, ठीक है। कुरान पाक में ये दोनों लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, अगर आप देखें तो सूरत अल काहफ में आप देखते हैं आयत नंबर 17 में, व इजा गरबत तकरीदुहुम ज़ात शिमाल, ये जो लफ्ज है ना तकरीदुहुम, ये कर्ज है। तर्जमा क्या था, और गरूब होता है तो इनके बाई तरफ से कुतरा कर गुजर जाता है, कट करता है उस वजह से, आप कहते हैं ना आई एम टेकिंग कट, तो सूरज के एक तरफ जाने को यहाँ अल्लाह ताला ने तकरीदुहुम कहा था, ठीक है। ये तो हो गए इसके डिक्शनरी के माने, लिंग्विस्टिक मीनिंग, मीनिंग क्या हुए, दो हमने समझे हैं, काटना और गुजर जाना। आगे एक और लफ्ज भी हम पढ़ेंगे, सलफा, लेकिन हम अब इसका अगला मानी देखेंगे, शरई मानी क्या है, इस्लामी शरिया में कर्ज के क्या मानी है। तो लिख लीजिए, कर्ज से मुराद किसी चीज का इस शर्त पर देना कि इसका बदल वापस किया जाए। ये नोट कीजिएगा, दो बातें हैं, नंबर एक वापसी इसमें लाजमी होगी, हिबा भी एक चीज होती है उसमें वापसी नहीं होती, सदका भी चीज एक होती है वो वापस नहीं लिया जाता, जकात भी एक चीज होती है वो नहीं, कर्ज के अंदर या उधार के अंदर वापसी लाजिम है, और दूसरी बात कि वापस वही चीज ली जाएगी जो के दी थी, बात वाज़ है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो सेम चीज ली जाएगी। फिर इसी तरह इसकी एक डिक्शनरी में तारीफ, इब्ने हज़म है वो इसकी तारीफ क्या कहते हैं, कि तू कोई चीज अपने माल में से किसी को इस शर्त पर दो कि इसकी मिसल अभी तुझे अदा करे या एक मुकर्रर मुद्दत तक। तो क्या पता चला, कर्ज क्या है कि जब आप किसी को देते हैं तो शर्त यह है कि या तो वो उसके मिसल कोई चीज अभी दे दे, मसलन आपने किसी को पैसे दिए तो उन पैसों की वैल्यू की कोई चीज वो आपको फौरन दे दे, और दूसरी सूरत क्या है कि एक मुकर्रर मुद्दत बाद दे दे। इस्लाम ने डीलिंग्स को बहुत अहमियत दी है, याद रखिए, मुआमलात कहते हैं इसको। हम पूरे दीन इस्लाम के अगर हिस्से करें ना तो चार पार्ट्स हैं, अकायद, इबादात, मुआमलात और अखलाकियात, ठीक है। तो इस कर्ज के टॉपिक का जो जोड़ जुड़ता है इस्लाम की बिल्डिंग में वो कहाँ जाता है, मुआमलात में। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दीनु हुवल मुआमला, असल दीन जो है ना ये मामलों का नाम है। हम क्या कहते हैं, असल दीन क्या है, हाफिज बनना या किताबों को याद करना। कौन शख्स कितना दीनदार है कैसे पता चलेगा, जब आपका उससे मामला पड़ेगा। हजरत उमर के दौर में किसी ने आके किसी दूसरे शख्स की बहुत तारीफ की हजरत उमर के सामने, तो कहा ये बताओ कि तुम वो तुम्हारा हमसाया, कहा नहीं, कहने लगे कभी तुमने उसके साथ सफर किया, कहा नहीं, कहने लगे अच्छा ये बताओ कि कभी तुम्हारा उसके साथ कोई लेन देन हुआ, कहा नहीं, कहेंगे फिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी की तारीफ का। हजरत उमर का ये कॉल क्या बताता है, किसी की सच्ची दीनदारी तब खुलती है जब आपका उससे मामला पड़ता है। पंजाबी में इसको कहते हैं रा प्या जाने ते वा प्या जाने, पता नहीं अब जिसको समझ आई वो लिख ले, जब आपका किसी से मामला पड़ता है ना तो फिर आपकी असल खुलती है, और इट्स ट्रू। और सफर की बात इसलिए कि सफर में लोग फिर अपना छुपा नहीं पाते, तो क्या पता चला कि कर्ज के अंदर मामला है, और ये शदीद नौयत का मामला है। बाज रिवायत से यहां तक इशारे मिलते हैं कि क्यामत के दिन अल्लाह सुबहाना ताला अपने और बंदे के जो मामले हैं ना, हकूकुल्ला जिसको आप कहते हैं, उसमें नरमी बरतेंगे। अल्लाह सुबहान तआला विल लेट यू गो, ओके जाने दो फरिश्ते, इट्स फाइन, आई एम अलवास से, मैं बड़ा वसी कल वाला हूं, मैं दर गुजर करता हूँ, जाने दो। लेकिन जहां लोगों के दो मामलात होंगे तो वहां अल्लाह ताला सख्ती करेंगे। बास रिवायत में यहां तक इशारे मिलते हैं कि जब तक दो लोग खुद आपस में एक दूसरे को माफ ना कर दें, अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करेंगे। फिर इस तरह यहां तक एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह ताला ने जाने का हुक्म दे दिया होगा जन्नत में, लेकिन फिर एकदम उसको वहां से बुलाया जाएगा कि तेरा फुलां के साथ मामला है, उसको पहले डील कर फिर जाना। और आप इसको यहां तक देखें, यदि आप कह लें कि जन्नत के क्लोज जो एच है पुल सरात का, उसको कंतरा कहते हैं, और वहां हकूकुल्लाह नहीं हकूकुल इबाद चलेंगे। तो लिहाजा मनी मैटर्स तो मामलात में सबसे शदीद है, बस यहां इतना समझ लें कि वी शुड बी फियरफुल अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। आपके लिए सामने इंट्रो में मैंने सूरत निसा की जो आयत पढ़ी उसमें दो दफा तकवा का जिक्र है। खुतबा निकाह के मौके पे अल्लाह के नबी ये आयत पढ़ते थे। तो एक तकवा होता है अल्लाह के मामलों में और एक तकवा होता है बंदों के साथ। तो आप कह सकते हैं कि कर्ज या उधार या डेब्ट के मामले बंदों के साथ होते। इसी तरह कर्ज की एक और तारीफ शेख शर्बीनी कहते हैं, हुआ तमलीक शई अला आई योरद बदलुहू, वो किसी चीज के शर्त पर मालिक बनना है कि इसकी मिसल वापस की जाए। आपकी ये पेंसिल नहीं थी, आपने मुझे कहा कि मैं आपसे ये उधार ले लूं, तो मैं आपको कहती हूँ ले लीजिए। मेरा हक क्या बनता है मैं आपसे पूछूं कब वापस करेंगे, और जब आप वापस करेंगे तो क्या ये बिल्कुल इसी सिचुएशन की होगी? ठीक है, आपने कहा ठीक है, ले लिया। अब जो ही ये पेंसिल आपके हाथ में हो गई तो आप क्या हो गई, इसकी मालिक बन गई। समझ आ रही है? ये जो शर्त है ना, इस शर्त पे मालिक बनना कि मैं वापस, यानी आप तो ये तो पेंसिल अब जाहिर आप यूज करेंगे, ये छोटी हो जाएगी, ये होगा। कर्ज में क्या आप मुझे कहेंगी कि मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी ही नई पेंसिल ला के दे दूंगी। आप सोचिए ना, ये न्यू पेंसिल है, ब्रांड न्यू है, आपने मुझसे ली, अभी आपको चाहिए थी, जरूरत थी, वट एवर। एक तो आप कहते हैं मैं यूज कर लूँ, जस्ट इज फाइन, लेकिन अगर आप इसको एज अ कर्ज मुझसे लेते हैं तो हक क्या है कि फिर आप इसको पूरी वापस करेंगे। ठीक है, तो वक्ती तौर पर आप रहते हैं। अब अगला सवाल लिखिए अपने पास, कर्ज को कर्ज क्यों कहते हैं? सबबे तस्मिया, इसम कहते हैं नाम को, रीजन यानी कर्ज को कर्ज की वजह क्या है। तो क्या मानी बताया था कर्ज का पहले, टू कट। तो साहिब माल अपने माल का एक हिस्सा काट कर मकरूज को देता है, इसलिए इसको कर्ज कहते हैं। बात वाजे? अब आपके बैंक की स्टेटमेंट में आपको दिख रहे हैं कि आपके पास $1,000 है, किसी ने आप $200 कर्ज मांग लिए, तो जो ही आपने उनको दिया तो आप किस बैंक स्टेटमेंट क्या शो करेगी, 800। तो टू कट के मानी इस वजह से इसको कर्ज कहते हैं। ठीक है, इसकी तारीफ शेख कहते हैं, और इसको इसलिए ये नाम देते हैं क्योंकि कर्ज को अपने माल का एक हिस्सा काट कर मकरूज को देता है। चलिए दूसरा नाम, कर्ज का एक और नाम क्या है, सलफ, सीन लाम फा। सलफ क्यों कहते हैं इसको, बल्कि अगर आप अरब मुल्कों में देखें ना, अहले हिजाज जो हैं वो कर्ज को सलफ कहते हैं। सलफ किसको कहते हैं, आपने लफ सुना है कभी, सलफ सालेहीन, सलफ कहते हैं, सलफ नहीं सलफ, सलफ कहते हैं गुजरे हुए को, पुराना, असलाफ नाम सुना होगा। चलिए आज के दौर में आपने एक नाम सुना होगा सलफी, फलां बच्चा बहुत सलफी हो गया, ये वही लफ्ज है। और बे सलम एक तिजारत की किस्म होती है जिसकी मुझे और आपको इस वक्त इतनी जरूरत नहीं, लेकिन बे सलम कहते हैं किसी चीज की कीमत पेशगी अदा की जाए, इस चीज की वसूली के लिए एक वक्त तयन किया जाए। इसको आज की जबान में इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लफ्ज होता है ना कंसाइनमेंट, उसमें क्या होता है आप ऑर्डर करते हैं, चीज आपको आती है, फिर बेच के आप वापिस करते हैं, ये बे सलम उसका ऑपोजिट है। मैं आपको कहती हूँ कि ये लीजिए $100 और आप जा रही हैं $100 की ये चीजें ले, पैसे मैंने आपको दे दिए, सलम सौंप दिया आपके, अब चीज आप मुझे देंगे। तो बे सलम कहे कि कीमत पहले दी और चीज बाद में मिलेगी। बात वाजे? बहुत बहुत सारी डील्स हैं ऐसी दुनिया में, आप इंटरनेट से जितनी शॉपिंग करते हैं वो बे सलम है, आपसे पैसे लेके कार्ड जब आपका क्रेडिट कार्ड ओके करता है फिर वो कहते हैं अब आपकी चीज शिप होगी। तो बे सलम में क्या है कि चीज पैसे पहले चीज बाद में। ठीक है, अब आप देखिए कि बाज़ुकात कर्ज का क्या मामला होता है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं असलम और सलफ दोनों का मानी एक ही है, दोनों अल्फाज का जिक्र हदीस में आता है, अलबत्ता इसका मखसूस नाम बे सलम है क्योंकि लफ्ज़ सलीब इस्तेमाल होता है सलम के लिए भी। इसको मैं अपने तौर पर बता देती हूँ कि कर्ज में आपने मुझसे $100 ले लिया, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ कि 2 महीने बाद आप मुझे $100 वापस दे देंगे, तो क्या ये वही किस्म का बिजनेस नहीं हो गया कि मैंने कंपनी को $100 दे दिया पे करके कि आप मुझे चीज भेज दें। समझे? पैसे दे दिए, अब अदायगी बाद में होगी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ना समझ आए तो छोड़ दें। तो पहली बात का खुलासा कर देती हूँ, पहला हमारा यहाँ एक टॉपिक पूरा हुआ, कर्ज क्या है। कर्ज का मानी है टू कट, काट देना। इसको कर्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो दे रहा होता है उसके माल में से वो चीज कट जाती है और दूसरे को मिलती है। फिर इसी तरह इसके अंदर सलम का बानी भी आ जाता है, सलफ क्यों कहते हैं, सलम की तरह, क्योंकि इसमें चीज पहले अगले के हवाले कर दी जाती है बाद में उसको वापस लिया जाता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें इन मानों का नाम भी पता होता, लेकिन हम एक मारूफ जो हमारे सोसाइटी में कर्ज का मामला है उसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि कर्ज इस्लाम में क्या है। जैसे आप देखें ना, मिसाल है कि आप कोई भी लफ्ज बोलते हैं तो आपके जेब में फौरन आता है ना, जैसे पिग, आपके जेब में पिग लफ्ज से फौरन आएगा, पिग कैश, चले उसके नाम खिंजीर की बात, लेकिन फौरन सवाल आता है ये हलाल है कि हराम। अच्छा पिक का गोश्त है या हराम में, ये बटर हर चीज है ना। इसी तरह मसलन खजूर, तो खजूर का नाम जहन में आए तुम्हारे जहन में, अच्छा खजूर होता है, एक फल होता है, सब्जी है, वट एवर जो भी है। हाँ फिर उसका इस्लाम में क्या है कि वो खा सकते हैं कि नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कर्ज की शरई हैसियत क्या है, बात समझ रहे। चले तिजारत को ले लीजिए, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप कोई चीज लेते हैं देते हैं, तो आपके जहन में ये सवाल आ जाता है कि भाई ये बताइए कि इस तरह तिजारत करना जायज है कि आप गए और $100 दिया और आप चीजें लेकर आ गए। हाँ तिजारत है, तो कर्ज की क्या बात है, बात कितनों को मेरी बात समझ होगी, यानी कर्ज दे सकते हैं कि नहीं, कर्ज ले सकते हैं कि नहीं, कर्ज देना हराम है, मकरूह है, या पसंदीदा है, या बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ना देना लेना। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा अहम टॉपिक है जो मेरे लिए हमारी आज की इस नशिस्त का सबसे मेन टॉपिक है।